हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चेतना जी और तेजू जी वापस दोपहर तक वापस घर आ गईं, जबकि आंशी अर्जुन के साथ शॉपिंग करने गई थी। अर्जुन ने शाम तक उसे वापस अमन के घर छोड़ दिया था। स्पेशली अमन को इम्प्रेस करने के लिए आंशी ने शॉपिंग की थी। जैसे ही वो घर पहुंची, वहां कोई नहीं था। सब कहाँ गए, उसने हाउस स्टाफ से पूछा। चेतना मैम इस टाइम बीजी के साथ वॉक पर जाती है, तो वो दोनों वहीं गई हैं और अमन सर 3 दिन के लिए आउटिंग पर है, हाउस हेल्पर ने बताया और वहां से चली गई। अमन का आउटिंग पर जाने का सुनकर आंशी का मुंह उतर गया। उसने एक नज़र शॉपिंग बैग्स की तरफ देखा। मुझसे दूर रहने के लिए कर रहे हो ना ये सब, और मैं, बोलते हुए आंशी रुक गई। उसकी आंखें नम होने लगीं। पता नहीं क्या सोचकर मैं दूसरों से उम्मीदें लगा लेती हूँ, जबकि हर बार पता होता है सामने वाला हर्ट ही करेगा। आंशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें तुरंत साफ किया और कमरे में चली गई। अंदर आते ही उसने जहाँ से शॉपिंग की थी उसी स्टोर में कॉल किया था। हेलो, मुझे अपना स्टफ चेंज कराना है, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप कल आ जाइएगा मैम, आपका काम हो जाएगा। स्टोर मैनेजर से बात होने के बाद आंशी चेंज करने चली गई। उसने सिंपल ब्लू जीन्स और उस पर रेड टी शर्ट पहनी थी। बालों की पोनीटेल बनाकर वो बिल्कुल उसी तरह तैयार हुई जैसे अपने घर पर रहती थी। मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने में एफर्ट्स डालने के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि तुमसे दूर कैसे रहना है, आंशी ने खुद को देखकर स्माइल की। थोड़ी देर पहले उसका मूड अपसेट था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसे खुद को ठीक कैसे करना है। दिव्याना का मुंह बंद करने के बाद विधिक ने कमरा भी बाहर से बंद कर दिया। विधिक अपने कमरे में था और वो बियर पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। ओके फाइन, तुम्हें खुद को संभालना होगा विधिक, उस पर गुस्सा नहीं करना। बटरफ्लाई ने ये जानबूझकर नहीं किया, सब कोइंसिडेंटली हुआ है और इसमें उस रॉबिन की गलती है। उस दिन उसने ही उस मैरिज ब्यूरो में सबकी शादी करवाई थी। रॉबिन का नाम आते ही विधिक ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पंच किया। ब्लडी हेल, लोग जो भी गलती करें, तुम अपनी लिमिट मत भूलना बटरफ्लाई, ये बात हमेशा याद रखना। तुम सिर्फ मेरी हो और गलती से भी किसी के करीब जाने की सोचना भी मत, वरना मैं क्या कर जाऊंगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। विधिक को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे इस वक्त किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे संभाल सके। उसने इतने दिनों बाद हरलीन को कॉल किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरलीन भी उसका कॉल देखकर हैरान थी। आर यू फाइन विधिक, कॉल पिक करते ही उन्होंने सीधा विधिक के बारे में पूछा। नो बुआ, आई एम नॉट फाइन। तुम ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें कितनी बार कहा है ज्यादा मत पिया करो, हरलीन उसे समझाने लगी। बुआ, आई फाउंड आंश, बट उसने शादी कर ली है, विधिक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। वही उसकी बात सुनकर हरलीन भी चौंक गई। वो अच्छे से जानती थी विधिक आंशी से कितना प्यार करता था और ये मोमेंट उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। विधिक, तुम तुरंत न्यूयॉर्क वापस आ जाओ, आई डोंट वॉन्ट लिसन एनीथिंग, तुम अभी आ रहे हो, हरलीन ने खुद को सख्त करके कहा। नहीं नहीं बुआ, मैं उसे लिए बिना वापस नहीं आऊँगा, आपने भी मुझे परमिशन दी थी कि इस काम के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आई प्रॉमिस बुआ, उसके मिलने के बाद मैं इन सबसे दूर चला जाऊँगा, आपके पास आ जाऊंगा आंशी को लेकर न्यूयॉर्क में, तब तक प्लीज मुझे फोर्स मत करो। विधिक, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती, हरलीन ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बुआ, सब ठीक है बुआ, वो उसने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, कहते हुए विधिक ने इंडिया में जो भी हुआ था उन सब के बारे में हरलीन को बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें कोई भी गलत काम करने से मना किया था ना विधिक, तुम फिर से इन सब में इन्वॉल्व होने लगे, हरलीन ने अपने गुस्से को काबू करके कहा। मैं छोड़ दूंगा बुआ, लेकिन आंशी के मिलने के बाद उस तक पहुंचने के लिए मुझे हर सही गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा, मुझे पता है अब वो कहाँ है। आई प्रॉमिस यू बुआ, मैं जल्द ही उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। आई होप सो, कहकर हरलीन ने कॉल कट कर दिया। हरलीन से बात करने के बाद विधिक किचन में आया। वो अपने लिए हार्ड कॉफी बना रहा था ताकि उसका नशा उतर सके। कॉफी पीने के बाद उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। उसने कुछ मेडिसिन्स ली और उसके बाद दिव्याना के कमरे में गया। दिव्याना कुर्सी पर सोई हुई थी, तो उसने पानी का एक गिलास उसके मुंह पर फेंक दिया। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, दिव्याना बोली। उसकी कोई भी बात का जवाब देने से पहले विधिक उसे खोलने लगा। उसकी रस्सियाँ खोलने के बाद वो उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, आई विल हेल्प यू टू एवरी पॉसिबल वे, बट मुझे मेरी आंशी चाहिए। वो भी, विधिक बोलते हुए रुक गया, उसके और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच कुछ होना नहीं चाहिए। वन मोर थिंग, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें, पर जो काम मैंने हाथ में लिया है उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर तुमसे हाथ मिलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इस देश को नुकसान पहुंचाकर आंशी को लेकर जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ उसे भी क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फ्यूचर में तुम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा मैं काम बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने देश और प्यार के लिए किस हद तक जा सकती हो। तुम मुझे आंशी लाकर दे दो, उसी वक्त मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। ना मुझे मेरे मिशन से मतलब, ना तुम्हारे देश से मतलब और ना ही तुम्हारे प्यार से। विधिक ने अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया था। ठीक है फिर, डील डन। दिव्याना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ विधिक की तरफ बढ़ाया। उसने भी उससे हाथ मिला लिया। दिव्याना को जल्द से जल्द आंशी को विधिक तक पहुंचाना था। इस तरह वो अपनी पोजीशन और इस देश दोनों को बचा सकती थी। साथ ही अमन और आंशी को अलग होने पर उसे अमन को फिर से हासिल करने की रास्ता भी नजर आ रहा था। ठीक है फिर, सुबह मिलते हैं और वही करना जो मैं कहती हूँ, बोलकर दिव्याना ने लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। दिव्याना से बात करने के बाद विधिक भी अपने कमरे में आ गया था। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा हूँ बटरफ्लाई, जिस काम में मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए वो छोड़कर तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ बिता लूंगा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें भी सिर्फ मेरा होकर रहना होगा। फिर से वही बटरफ्लाई बनना होगा जो पहले थी। विधिक आंशी से बहुत प्यार करता था और आज पहली बार उसने दिल से इन सब कामों को छोड़ने का सोचा था। चंडीगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर एक अंधेरी जगह पर एक बंद फैक्ट्री थी। उस जगह की कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो टूटी फूटी हालत में थी। वहाँ पहुँचने से कुछ दूर पहले ही अमन ने गाड़ी रोक दी। फैक्ट्री तक अमन और लावण्या पैदल चलकर गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, लावण्या ने धीमी आवाज़ में कहा, आर यू श्योर इस जगह पर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं? ये तो बंद पड़ी है, ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा भी है। आज पूरे दिन में ये तीसरी जगह है, लास्ट टू टाइम्स भी तुमने यही कहा था। पता है ना ये लोग कितने शातिर होते हैं, चलो मेरे पीछे आओ। अमन ने अपनी गन सामने की ओर दबे कदमों से अंदर जाने लगा। अंधेरा होने की वजह से लावण्या लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। संभाल कर चलो, यहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम हम टॉर्च तो जला ही सकते हैं। हमने लाइटिंग की तो यहाँ मौजूद लोग सतर्क हो जाएंगे, पुलिस आते ही होगी, तब तक हमें अंदर पहुँचना होगा। अमन ने लावण्या का हाथ पकड़ा और दबे पाँव अंदर जाने लगा।
उसने अपने हाथ में एक पॉकेट लाइटर ले रखा था, उसी की रोशनी और स्ट्रीट लाइट के भरोसे वो छुपते छुपाते अंदर की तरफ जा रहे थे। अंदर जाने के बाद वो लोग बेसमेंट तक पहुंचे जो कि अंडरग्राउंड था। ये बंद है और इसका दरवाज़ा भी खराब हो चुका है, हम बेवजह यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पिछली दो बार में फिर भी थोड़े बहुत चांस थे, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, लावण्या झुंझला कर बोली। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो लाइटर के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। आगे जाने के लिए उसे अपने मोबाइल की टॉर्च जलानी ही पड़ी। तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर गई जो आधी बनी हुई थी और आधी टूटी हुई थी। अमन ने अपने फ़ोन की टॉर्च बंद की और दिव्याना को उस पार जाने का इशारा किया। वो लोग उस दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ गए तो वहाँ नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। सीढ़ियों के सहारे वो लोग नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें रोशनी दिखाई दी। वो हिस्सा अंडरग्राउंड में बनाया गया था और उस तक पहुंचना आसान नहीं था। अमन और जब लावण्या नीचे की तरफ झांक कर देखा तो वहां लोग बॉम्ब बनाने के काम में जुटे थे। उन सब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मास्क और अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे। अमन ने पुलिस टीम को मैसेज करके लोकेशन के बारे में बताया तो लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही वो सब लोग सीढ़ियों के सहारे नीचे की तरफ उतरे। पुलिस ने उन सब के काम को रुकाया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। अमन और लावण्या पहले ही बाहर आ चुके थे। मेलिसा वहां से छुपकर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी लावण्या ने उसके पीछे गन से वार किया। एक ही वार में वो बेहोश हो चुकी थी। अमन ने उसे गोद में उठाया और कहा, फाइनली सुबह से जिस काम में लगे थे वो हो गया, अगर प्लान बी भी फ्लॉप हो जाता तो। अमन बोलते हुए रुक गया। आई ट्रस्ट यू, तुम ऐसा नहीं होने देते। चलो अब इसे लेकर चलते हैं। देखा जाए तो इन पर रेड डालने के साथ ही उन लोगों का आधा प्लान वैसे भी फ्लॉप हो चुका है। अगले दो दिनों में वो अपना काम नए सिरे से कभी शुरू नहीं कर पाएंगे, लावण्या ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। उसने फिर मेलिसा की तरफ देखा जो अमन के कंधे पर बेहोश गिरी थी। अमन ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। उनके इतने दिनों की मेहनत आखिर रंग ले ही आई थी। अमन और लावण्या मेलिसा के साथ एजेंसी ऑफिस पहुंचे। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी।